आयु हॉस्पिटल से निकली तब तक सुबह के 9 बज गए थे। उसे जहान ने ठीक 9 बजे फाइट क्लब पहुंचने का कहा था, जबकि वो उस टाइम तक हॉस्पिटल में ही थी। अपनी गाड़ी में बैठने से पहले आयु ने खुद से कहा, उसने जिस टाइम तक आने के लिए कहा था वो तो यहीं पर हो गया। अब गई तो पक्का डांट लगाएगा, और नहीं गई तो क्या पता ट्रेनिंग देने से मना कर दे। उफ यार, टू मच कन्फ्यूजन। आयु उलझन में थी कि वो घर जाए या फाइट क्लब। फिर उसने फाइट क्लब जाना तय किया और अपनी गाड़ी उसी तरफ बढ़ा ली। रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उसे वहां पहुंचने में पूरे 3 घंटे का टाइम लग गया। जहान उसके आने का इंतजार कर रहा था। आयु वहां पहुंचे तो वहां काफी शांति थी, क्योंकि जिम या ट्रेनिंग करने वाले लोग सुबह या शाम के वक्त आते थे, और अब दोपहर हो गई थी। आयु को दोपहर में वहां देखकर जहान ने टॉन्टिंग वे में कहा, चलो अच्छा है तुम्हारी आंख खुल गई डॉक्टर, मुझे लगा तुम अब अगले दिन ही आओगे। वो हॉस्पिटल में मेरी नाइट ड्यूटी होती है, ऊपर से इमरजेंसी होने की वजह से मुझे ओटी में जाना पड़ा। कोई और डॉक्टर नहीं था तो सर्जरी मुझे ही करनी पड़ी, इस वजह से मुझे देर हो गई। आयु ने उसे अपने देर से आने का कारण बताया। उसे लगा जहान उसकी बातों से कन्विंस हो जाएगा। जहान ने कंधे उचकाकर जवाब में कहा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है डॉक्टर, अब तुम यहां से जा सकते हो, और कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर ढूंढ लेना जहां तुम्हारे हिसाब से शेड्यूल चलता हो। जहान ने इनडायरेक्टली उसे ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था। आयु ने उससे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसके पास आई और भराई आवाज में कहा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा बहुत समझना होगा, वहां से फ्री होकर मैं सीधा यहां पर आई हूं। सोचो पूरी रात ड्यूटी करने के बाद मैं फ्रेश तक नहीं हुई, मेरे लिए चीजें काफी हेक्टिक थी, ये मेरी पहली सर्जरी थी। मुबारक हो डॉक्टर अपनी पहली सक्सेसफुल सर्जरी के लिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लेट से आने पर मैं तुम्हें कुछ ना कहूं? मुझे डिसिप्लिन लोग पसंद है, और फाइट जैसी चीज सीखने के लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जहान ने सख्त शब्दों में कहा। इस बार के लिए जाने दो, अगली बार पक्का ध्यान रखूंगी, आयु ने प्लीडिंग वे में कहा। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर जहान का दिल पिघल गया था। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। आयु को अब तक यही लग रहा था कि जहान उससे गुस्सा है। उसके बिना कुछ कहे जाने पर आयु ने खुद से बड़बड़ाकर कहा, सब मेरी ही गलती है, लगता है मुझे आरफ खुराना से बदला लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। वैसे भी वो आजकल कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन ऐसे कैसे जाने दूं? आयु खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। जहान के काफी देर तक ना आने की वजह से उसने हार मान ली और वो वहां से जाने लगी। आयु फाइट क्लब के दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर थी कि तभी पीछे से जहान की आवाज आई, सर्जरी करते टाइम भी इसी तरह हार मान ली थी क्या, या बीच में छोड़कर बाहर निकल आई थी? जहान की आवाज सुनकर आयु ने पीछे मुड़कर देखा। उसके हाथ में सर्विंग ट्रे थी जिसके अंदर नाश्ता और जूस का ग्लास रखा हुआ था। जहान ने उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। आयु वापस जहान के पास गई और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर दो, वही मेरे लिए काफी होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए फिजिकली फिट होना जरूरी है। अभी अभी तुमने बताया ना कि तुम फ्रेश तक होकर नहीं आई हो, तो नाश्ता कहाँ से किया होगा? ऐसा करो, उधर लेफ्ट साइड जाओगी तो वॉशरूम है, जल्दी आना, जहान ने वॉशरूम की तरफ इशारा करके कहा। आयु मना करना चाह रही थी, लेकिन जहान ने फिर से उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखते हुए वॉशरूम की तरफ इशारा किया तो उसे उधर जाना ही पड़ा। लगभग 10 मिनट बाद वो वापस आई तो जहान वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। उसके आते ही जहान ने कहा, चलो आओ, पहले ब्रेकफास्ट करो और ज्यादा मत सोचो। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने नाश्ते की ट्रे की तरफ देखा तो उसमें एक हेल्दी ब्रेकफास्ट था जिसमें नट्स और न्यूट्रिशियस फूड रखा हुआ था। ब्रेकफास्ट देखने के बाद आयु ने कहा, तुम क्या कोई डाइटिशियन हो जो इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हो? डाइटिशियन नहीं हूं, लेकिन अपनी बॉडी का ख्याल रखना अच्छे से आता है। तुम सिर्फ नाम की डॉक्टर लगती हो, बाकी तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई डॉक्टर हो। क्या अपनी हेल्थ की तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है? जहान ने उसे डांटा। उसकी बातें काफी हद तक सही थीं। आयु अपने काम के चक्कर में अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर करती थी। उसने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया और उसके बाद उसने कुछ दवाइयां ली। लो, तुम तो खुद बीमार हो, जहान ने मुंह बनाकर कहा तो आयु उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। जहान ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा हूं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब मुझे बताओ कि क्या करना है। आयु अपनी ट्रेनिंग के पहले दिन को लेकर काफी एक्साइटेड हो रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसे एनर्जेटिक भी फील हो रहा था। जहान ने उसकी बात पर हामी भरी और आयु को जिम एरिया की तरफ लेकर आया। वहां एक हैवी सा पंचिंग बैग लगा हुआ था। जहान ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारा जितना भी गुस्सा और दर्द है वो तुम इस पंचिंग बैग पर निकाल सकती हो। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज है, इसलिए शुरुआत में तुम्हें 1 घंटे इसके साथ रोज प्रैक्टिस करनी होगी। ये पूरे होने के बाद बताऊंगा कि क्या करना है। ग्लव्स पहन लेना वरना तुम्हारे हाथों पर चोट लग जाएगी। आयु को सब समझाने के बाद जहान ने वहां लगी छोटी सी घड़ी में टाइमर सेट कर दिया। वो वहां से जाने को हुआ तभी आयु ने जल्दी से कहा, एक घंटा? ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? ये मेरा पहला दिन है और तुम मेरे साथ इतना हार्श हो रहे हो। इसी बात पर तुम 1 घंटा 20 मिनट के लिए पंचिंग बैग पर पंच करोगी, जहान ने स्माइल करके कहा, मानो वो आयु को चिढ़ा रहा हो। प्लीज 1 घंटे 20 मिनट नहीं, आयु ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। आयु की बात खत्म ही हुई थी कि जहान ने फिर कहा, 1 घंटे 40 मिनट डॉक्टर, अगर अब थोड़ी भी चूं चाकी तो तुम्हारा टाइम और बढ़ा दूंगा। बोलते हुए जहान ने फिर से टाइमर सेट किया और आयु से कहा, चलो अब शुरू हो जाओ और आगे से कंफर्टेबल कपड़े साथ लेकर आना, हर चीज मैं प्रोवाइड नहीं करवाने वाला। हाँ हाँ ठीक है, कल से ब्रेकफास्ट भी करके आऊंगी, आयु ने चिढ़कर कहा। नहीं, ब्रेकफास्ट रहने देना, डाइट मैं ही सेट करूंगा, जहान ने जवाब दिया। रहने दो, मुझे इस एहसान की जरूरत नहीं है, बोलते हुए आयु खुद को पंचिंग बैग पर पंच करने के लिए रेडी कर रही थी। उसने जहान के दिए हुए ग्लव्स पहने ताकि उसके हाथों पर चोट ना लग जाए। ऐसा नहीं है डॉक्टर, तुम्हें फेस पे करनी होगी, डाइट भी उसी में इंक्लूड है, अब टाइम वेस्ट मत करो और शुरू हो जाओ। जहान ने अपनी बात खत्म की और उस एरिया से चला गया। जहान के जाने के बाद आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद को तैयार करने लगी। वो पंचिंग बैग पर लगातार पंच करते हुए खुद से बातें कर रही थी। कम ऑन आयुष्का सिंह ओबेरॉय, तुम्हें नहीं भूलना है तुम किस लिए यहाँ आई हो, उस आरव खुराना से बदला लेने के लिए जिसने तुम्हारी बहन को मार दिया। भले वो दिखने में कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, उसकी हरकतें क्यूट क्यों ना हो, लेकिन सच ये है कि वो एक मुखौटे के पीछे है। उस मुखौटे के पीछे का चेहरा काफी घिनौना है और वो सिर्फ और सिर्फ तुमने देखा है। आरव खुराना, मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच लाकर रहूंगी। तुमने जो किया है उसकी सजा कानून तुम्हें कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम जैसे लोग कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते हो, लेकिन मैं तुम्हें वही सजा दूंगी जो तुमने मेरी बहन के साथ किया था। अगर तुम्हें होटल साज की छत से नीचे नहीं फेंक दिया तो मेरा नाम भी आयुष्का सिंह ओबेरॉय नहीं। आयु अपने गुस्से को पंचिंग बैग पर उतार रही थी और वो लगातार उस पर पंच मारी जा रही थी। जहान उसे दूर से देख रहा था।
उसकी डेडिकेशन को देखकर जहान ने स्माइल करते हुए कहा, लगता है इस मासूम चेहरे के पीछे किसी का बर्बाद करने की हसरतें जन्म ले रही है। लगी है हो डॉक्टर, अगर इसी डेडिकेशन के साथ करती रही तो सच में वो दिन दूर नहीं जब तुम उसे बर्बाद कर दोगी। जहान उस पर नजरें बनाए हुए था। पहले भी वो इस तरह की ट्रेनिंग औरों को दे चुका था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उससे ट्रेनिंग लेने वाला इंसान आगे जाकर उसका किस तरह यूज करता है, उसे बस अपने काम से मतलब था। आयु के जाने के बाद आरव ओटी के बाहर आ गया था। गौरवी जी के टेस्ट के बाद उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें अब तक होश नहीं आया था। कबीर वापस आ गया था और वो उनका ध्यान रख रहा था। वहीं आरव साक्षी के रूम में था क्योंकि सर्जरी के बाद उसे होश आ गया था और वो रिकवर भी कर रही थी। तुम्हें दादी के पास होना चाहिए, पता नहीं उन्हें कब होश आ जाए और उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े, साक्षी ने उसे समझाते हुए कहा। मैं जानता हूँ किस वक्त मेरी जरूरत कहाँ होती है। कबीर वहां पर है और दादी को होश आते ही वो मुझे कॉल कर देगा। अयान भी है। तुम बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो? होश में आने के बाद आरव उससे पहली बार मिलने आया था। बस अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो मुझे लगभग उड़ा ही दिया था, मुझे नहीं पता था वो मुझसे इस तरह बदला लेगी, साक्षी ने सार्कास्टिक वे में कहा। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, आरव ने माहिरा की तरफ से सफाई दी। आरव को माहिरा का पक्ष लेते देखा साक्षी ने मुंह बनाकर कहा, हाँ जैसे वो तुम्हें सच बता ही देगी कि उसने ये जानबूझकर किया था या नहीं। हाँ अगर उसने जानबूझकर किया होता तो वो जरूर बताती। तुम उसे छोड़ो, अपनी बात करो, बताओ रिकवर होने के बाद क्या करने का प्लान है, आरव ने बात को बदलते हुए पूछा। जो भी प्लान हो, लेकिन तुम्हारे साथ डिनर पर कभी नहीं जाऊंगी, साक्षी ने हल्का हंसते हुए कहा। पिछली बार माहिरा और उसकी बहस आरव के यहाँ डिनर गैदरिंग पर ही हुई थी। उसकी बात सुनकर आरव भी मुस्कुरा दिया। आरव को मुस्कुराते देख साक्षी ने अचानक पूछा, ये साफ है तुम उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अगर किसी दिन तुम्हें सच में किसी से प्यार हुआ तो सोचा है वो लड़की उसे कितना और किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है? साक्षी की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी आरव के आगे आयु का चेहरा आने लगा। इसी के साथ उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर बाहर चला गया।